स्थित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से सपन्या नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सो संधी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का हाँ तू सो संधी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से सपन्याह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे लिए सपन्याह के पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा, तत्पश्चात हम एक नए अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम इस पुस्तक के अंतिम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु अब तक आपने हमें आशीषित किया है, अपने वचन के द्वारा हमारे श्रोता भाई बहनों से बोला और बातचीत किया है। आज जब हम सपन्याह की पुस्तक से अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी विनती है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। जिस प्रकार से आरंभ से आपने हम सबकी इस पुस्तक के अध्ययन में सहायता की है, आज भी आप विशेष रीति से हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि प्रभु आपके वचन की गंभीरता को हम समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और उसके अनुसार अपना जीवन ढाल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, शैतान के छल प्रपंच से, बुरी संगति से आप हमारे प्रत्येक श्रोताओं की रक्षा करें। आज अपने वचन पर आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, परमेश्वर यरूशलेम की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके हाकिम करते कुछ नहीं थे, केवल वे बड़ी बड़ी बातें करते थे और न्यायी सोचते थे कि जनता को एक ही बार में लूटकर खा जाएं। उनके भविष्यद्वक्ता धोखे की वाणी सुनाते थे और याजक भ्रष्टाचार फैला रहे थे। वे सोचते थे कि परमेश्वर उनके कुमार्गों का अनुमोदन करता है, परंतु परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है। जी हां, उन्हें तो लज्जा भी नहीं आती थी कि लोग उन्हें देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देने उठ खड़ा हो गया है। परमेश्वर से बलवा करने वाला कोई नहीं होगा। स्वर्ग एक अति उत्तम स्थान होगा और सच यही है कि जो परमेश्वर से बलवा करता है वह नाश किया जाता है। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए सपन्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी तीतर बीतर की हुई प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। मेरे प्रियो, इस पद की अनेक व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाचा का संदूक इथोपिया में है और उस समय वह यरूशलेम लाया जाएगा, और मेरे विचार में सपन्याह के मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं है। कुछ लोग इथोपिया की एक आदिवासी जाति का संदर्भ देते हैं जिसका नाम फलशास है, अर्थात अप्रवासी, जैसे पलिश्ती और दावा करते हैं कि उनका मूल इसराइल में है। उनका कहना है कि ये परमेश्वर की तितर बितर की हुई प्रजा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अन्य जातियों से परमेश्वर को ग्रहण करने वाले इसराइलियों को लेकर यरूशलेम आएंगे, जैसे परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे हो। मेरे प्रियो, मेरा अपना विचार है कि यह पद इथोपिया के प्रभु राज प्रवेश के बारे में है। यही ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है। वे प्रभु का उद्धार ग्रहण करके अवश्य आएंगे। सपन्या 3:11 में लिखा हुआ है, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। परमेश्वर अपनी प्रजा से कह रहा है, परमेश्वर द्वारा उन्हें दंड देने का कारण था कि वे दुराचारी थे और अनैतिक व्यवहार करते थे और लजाते भी नहीं थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर के लोग पाप करके संतोष नहीं पाते हैं। पाप में आनंदित रहने वाला परमेश्वर की संतान नहीं है। जी हाँ, यही निश्चित है। उड़ाव पुत्र सुअरों के बाड़े में खुश नहीं था। वह पिता का पुत्र था, इसलिए उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। सुअरों में वह नहीं गया। सुअर सुअरों में जाएगा और पुत्र अपने पिता के पास जाएगा, क्योंकि उसमें पिता का स्वभाव है। परमेश्वर इस तथ्य को स्पष्ट करता है, उस दिन तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी फिर लज्जित ना होगी। आगे कहता है, उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। यह उस दिन होगा जब दीन जन पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस समय पृथ्वी के अधिकारी दूसरे लोग हैं जो संचालन करने में उचित नहीं है। सपन्या 3:12 में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। मेरे मित्रों, जब बेबीलोन वासियों ने यहूदियों को बंदी बनाया तब वे 3 बार उन्हें बंदी बनाकर ले गए थे, परंतु गरीब पीड़ित और विकलांग वहीं पर छोड़ दिए गए थे। बेबीलोन की बंधुआई में जाना अति भयानक था, परंतु उजड़े हुए देश में रह जाना और भी अधिक भयानक था। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। मेरे प्रियो, संपूर्ण धर्मशास्त्र में आप देखेंगे कि परमेश्वर गरीबों के कल्याण और उनके साथ उचित व्यवहार के समय की चर्चा करता है। आज गरीबों के कल्याण की योजना यदि किसी के पास है तो वह केवल प्रभु यीशु के पास है। यदि आप गरीब हैं, आपको आवश्यकता है, तो आप प्रभु यीशु के पास जाएं। जी हाँ, वही आपकी सहायता कर सकता है। संसार में बहुत से लोग दावे तो करते हैं कि वह गरीबों की सहायता करेंगे, परंतु वे सिर्फ दावा ही करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आज भी आपकी सहायता करना चाहता है। आप उसकी निकटता में आए और उसकी सहायता को मुफ्त में प्राप्त करें। सपन्या 3:13 में आगे हम पढ़ते हैं, इसराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला न होगा। लिखा है, इसराइल के बचे हुए लोग न तो कुटिलता करेंगे। परमेश्वर के पास सदा ही कुछ विश्वासी बचे हुए रहते हैं और प्रभु राज में एक बड़ा समूह बचा होगा। आगे कहता है, और न झूठ बोलेंगे और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। मेरे प्रियो, इसका अर्थ स्पष्ट है कि वे कभी ऐसा करते थे। परमेश्वर के भक्त भी पाप करते थे, परंतु पाप में रहते नहीं थे। वे सुअरों के बाड़े में चले भी जाएं, तो वहां नहीं रहेंगे, वे लौटकर वापस अवश्य आएंगे। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे और कोई उनको डराने वाला ना होगा। जी हाँ, यह सब तब होगा जब परमेश्वर अपनी प्रजा को स्वदेश लौटा लाएगा और अधिकारी बनाएगा। इसी कारण आप कहते हैं कि वहां जो कुछ हुआ और हो रहा है वह भविष्यवाणी की पूर्ति है। क्या वे निडर हैं? मेरे प्रियो, जब से यहूदी स्वदेश लौटे हैं, एक भी पल ऐसा नहीं था और है कि वे डरते ना हों। अब हम पृथ्वी पर राजा द्वारा स्थापित राज्य के युग की भविष्यवाणी को देखते हैं। आइए हम आगे पढ़ेंगे सपन्याह 3:14-15 को। लिखा हुआ है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा, हे इसराइल, जय जयकार कर, हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आएगा तब बुराई का दामन होगा और पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से। इस बात को हम यशाया 11:9 में पढ़ते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बुराई समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर का ज्ञान भर जाएगा। आगे सपन्याह कहता है 3:16 में, उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएं। जी हां, उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, मत डर। आज तो यरूशलेम के पास डरने का कारण है, परंतु उस समय उन्हें कोई डर न होगा। लिखा है, सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए, अर्थात प्रभु के लिए व्यस्त हो जा। पद 17 एक अति उत्तम पद है। तो आइए हम पढ़ें सपन्याह 3:17 को। लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का एक उद्देश्य है, वह दंड के अंधकार में गया कि हमें नए दिन के प्रकाश में लाए। वह यह सब इसलिए करता है कि वह दिन आए और वह उसके प्रेम में शांति पाए। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे प्रेम करता है। जी हाँ, मैं आपके विषय में तो कुछ नहीं जानता, परंतु अपने विषय में संदेह करता हूं कि वह मेरे लिए अपने प्रेम में शांति पाएगा या नहीं। वह मेरे बारे में कह पाएगा, वह अब तक सिद्ध नहीं हुआ है, वह बड़ा ही अपरिपक्व दिखता है, उसमें बहुत दोष है, वह पीछे हट जाएगा, कभी भी भटक जाएगा। आज परमेश्वर अपने प्रेम के मारे शांति नहीं पाएगा, परंतु वह दिन आता है जब हम उसकी समानता में होंगे। हमारा ऑपरेशन करने के बाद हम देखने लगेंगे, इसके बाद वह हमें अपने पास ले लेगा। यह कैसा महान एवं अनुपम चित्रण है। जी हाँ, वह हमारा ऑपरेशन कैसे करता है, हमारे जीवन के हर एक पाप की गंदगियों को वह हमसे दूर कर देता है, अपने उस बहुमूल्य और पवित्र लहू से हमें धो करके शुद्ध कर देता है ताकि हम उसकी संगति में बन जाएं। सपन्या 3 अध्याय उसके 18 से 20 पद में, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है, हम लोग पढ़ेंगे। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित वर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैल गई है उनकी प्रशंसा और कृति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले आऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कृति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। मेरे प्रियो, यह प्रकाशमान दिन आने वाला है। यह दिन इसराइल के लिए और कलीसिया के लिए भी महिमा का दिन होगा। परमेश्वर हम में से अनेकों को आग से परख रहा है और हमें परीक्षाओं से भी ले चलता है। स्वर्ग की महिमामय बात वहां की सोने की सड़कें, मोतियों के द्वार नहीं, और न ही यह कि वहां हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, परंतु वहां महिमा की बात तो यह होगी कि हम उसे अपनी प्रत्येक परेशानी, प्रत्येक बोझ का धन्यवाद देंगे जो उसने हमें इस जीवन में दिए हैं। मेरे प्रियो, अंत में मैं एक कविता के साथ समापन करना चाहता हूं। कविता कुछ इस प्रकार से है। खदान से, अंधकार से, गीले और आद्र से, आग से निकल कर आता है। सोने का हर एक कण बिना दया विश्वास योग्य साथी बिना पिसकर मिट्टी बनाया गया, पिघलाया गया, पीटा गया। काश ऐसा ना होता, ऐसी अग्नि परीक्षा। बेचारे सोने क्या किया था? ओह, उसे गीले और आद्र में रहने देते तो कृपा होती। यदि यही जीवन की महिमा है तो सोने की अपेक्षा मैल ही होता। प्रेस और चक्की में, टकसाल के जबड़ों में स्वतंत्रता का प्रतीक छपकर न कभी न दाग। ओह, परिष्कार का आनंद गीले और आद्र से बाहर, महान छवि लेकर। ओह, सोने का सुंदर सिक्का। मेरे प्रियो, एक दिन जब हम अपने उद्धारकर्ता की उपस्थिति में होंगे, तब हम प्रत्येक कष्ट, प्रत्येक दुख के लिए उसे धन्य कहेंगे। हम उसे धन्यवाद देंगे कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा एक बुद्धिमान पिता अपने बच्चे के साथ व्यवहार करता है, और हम उसे उसके प्रेम के शुक्ल पक्ष के लिए धन्यवाद देंगे। और जिस प्रकार सोने को निखारने के लिए तपाया जाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की बातों को आने देता है ताकि हमारे जीवन के अंदर पीड़ाएं उत्पन्न हो और हम परमेश्वर के और अधिक करीब चले आएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है वह उसकी ताड़ना भी करता है। यदि आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं या बीमारी अवस्था में हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप अपनी तकलीफों के लिए उसको धन्यवाद दें और निश्चय जानें कि वह आपके प्रेम को समझता है। वह आपकी सहायता करना चाहता है। आप अपने पापों से मन को फिराएं, उसकी ओर लौट आएं। सपन्या की पुस्तक हमें इन्हीं सारी बातों को बताता है कि किस प्रकार इसराइल परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर उन्हें बार बार अवसर देता रहा कि वे मन फिराकर उसकी ओर लौट आएं। और वह कहता है कि वह अपने लोगों को अवश्य ही छुटकारा देगा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसी के साथ सपन्या की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। हम अगले अध्ययन में एक नई पुस्तक के साथ में आएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अवश्य ही अपने मित्रों के साथ अगले अध्ययन में शामिल हों, ताकि हम फिर से परमेश्वर के वचन का अध्ययन एक साथ कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम्द करूं मैं तेरी ए प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम्द प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी